हार्दिक धन्यवाद देवियों, अति सुंदर प्रसंग शुरू हुआ है सर्वक्षणों मैत्री का, कल भी जारी रहेगा मैत्री प्राशर संवाद। काशी चर्चा थोड़ी शेष न होती तो आज ही मैत्री की चर्चा शुरू कर दी जाती, कल करेंगे। आत्मा की जो चर्चा शेष, कभी न समाप्त होने वाली चर्चा, पर संक्षिप्त रूप से आज उसे कंक्लूड करते हैं। थोड़ा व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछ दिया, महाराज सब संत महात्मा सब बड़े पांव को हाथ लगवाते हैं, आप क्यों नहीं लगवाते? इससे शिष्यों में श्रद्धा बढ़ती है। मानो स्वामी जी महाराज के साथ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की। व्यक्ति चाहे न चाहे, साधकजनों आयु भी जो बड़ा है वह भी अपेक्षा रखता है कि मेरे पांव छुए जाए। स्वामी जी महाराज ने कितना बड़ा काम किया हुआ है, शायद ही कोई कर सकने वाला हो। अपने जीवन काल में कभी किसी को पांव छूने की इजाजत नहीं थी। पुष्टि प्रेम जी महाराज ने तो और ही कमाल कर दी थी, कोई उनके पांव को छूने की कोशिश करता तो पहले छू देते। जिन्होंने पूछा प्रेम जी महाराज के दर्शन किए हुए हैं वे मेरे साथ सहमत होंगे, वे ऐसा किया करते थे, मानो अपने पांव छुआने की कोई गुंजाइश नहीं। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, बंधुओं साधना सत्संगों में मैं पहले परमात्मा की आरती उतारता हूं और उसके बाद मैं ये कहता हूं, हे राम इन बंधुओं में तुम्हें विराजमान जानकर इन सब की आरती उतारता हूं। जिनकी मैं आरती उतारूं उनको मैं कैसे अपने पांव छूने की इजाजत दूं? वे तो मेरे लिए वंदनीय हो गए। आरती तो बड़ों की उतारी जाती है, सोचे मैं इनको कितना बड़ा मानता हूं कि मैं इनकी आरती उतारता हूं। परमात्मा की नहीं कहा, कहा हे राम मैं तुम्हें इन सब बंधुओं में विराजमान जान के तो इनकी आरती उतारता हूं। नहीं कहा कि मैं तेरी आरती, तू बीच विराजमान है तो मैं तेरी आरती ना, मैं इनकी आरती उतारता हूं। व्यवहारिक पक्ष है आत्मबोध का, वह परमात्मा देव वह पर ब्रह्म परमात्मा हम सबके हृदयों में आत्मा के रूप में विराजमान है। ज्ञान उसे आत्मा कहता है, भक्त बहुत अच्छा मानता है वह आत्मा नहीं, वह कहता है परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है, एक ही बात है। भक्त को ये शोभनीय है, ज्ञानी को वह शोभनीय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एक संत और एक शिष्य का आपस में वार्तालाप है, हमें सब कुछ समझने में सहायक रहेगा। संत कहते हैं न मैं देह हूं, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न प्राण, और वे ऐसे ही विचरते अपने आत्म स्वभाव में, उसी स्वभाव को, वास्तविक स्वभाव को, अपने सत स्वभाव को सत स्वरूप में ही विचरते हैं। देही ऐसा नहीं करता, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, वह देह में विचरता है, ये आत्मा में विचरते हैं व देह में विचरता है। देवियों अंतर बहुत है, यदि ये कोई अच्छी बात होती तो संत महात्मा एवं शास्त्र कोई सुंदर शब्द इनके लिए प्रयोग करता। जो देह में विचरता है उसे देह अभिमानी कहा जाता है। जहां देवी अभिमान शब्द जुट जाता है वह विनाशकारी शब्द है, पतनकारी शब्द है। सोचें कितनी घृणित बात होगी शास्त्र की दृष्टि में अपने आप को देह मानना, अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मानना, मल मूत्र का बोरा मानना, कितनी निकृष्ट बात होगी जो शास्त्र ऐसों को देह अभिमानी कहता है, मिथ्या अभिमानी कहता है, देह भाव में विचरते हुए संसारी कहता है। साधक ने शिष्य ने पूछा, आप आत्मा की बात करते हो महाराज, क्या आत्मा कभी किसी ने देखा है? हाँ, मैं अभी भी आत्मा को देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? कहां है वे? भीतर, जिसके कारण हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना पचाते हैं, जिसके कारण हमारा हृदय गतिशील है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि भीतर विराजमान है। मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? हाँ, तो अपना परिचय पत्र दे, मैं अंदर भिजवा देता हूं। क्या नाम है तेरा? अपना नाम बताया। कमल। झूठ, ये तेरा नाम नहीं है? नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य है, सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, ये मेरा सही नाम है। यदि तेरा असली नाम ये होता तो गर्भ से निकलते ही तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता, या गर्भ में होते हुए ही तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता, तब तो किसी को पता भी नहीं होता कि अंदर लड़की है या लड़का, बाहर निकलते ही नाम दिया जाता है। हाँ महाराज, ये तो सत्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ ना, नाम तो इसलिए रखा गया है कि दो व्यक्तियों को अलग अलग समझा जा सके। मानो एक कंटेनर पर एक लेबल लगा दिया, उसे नाम कहा जाता है। क्या तुम कंटेनर हो? नहीं महाराज, मैं तो देह हूं। फिर वही बात है, तूने कोट पहना हुआ है, क्या तुम कोट हो? नहीं महाराज, कोट मेरा है, मैं कोट नहीं। हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। टांग मेरी है, मैं टांग नहीं। कान मेरे हैं, मैं कान नहीं। हां, अब ठीक है बात। तो तू कौन है? अपना परिचय, सही परिचय दे। इसका अर्थ ये हुआ, महाराज मैं देह नहीं हूं। हां, फिर क्या हो? मन। संत महात्मा कहते नहीं तो मन भी नहीं है, मन तो विचारों का पुतला है। प्रगाढ़ निद्रा में मन नहीं हुआ करता, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। लेकिन तू उठ के कहता है आज बहुत गहरी नींद सोया, वह कौन है? इसका अर्थ है तू मन भी नहीं। हां महाराज, मैं मन भी नहीं हूं, मैं वह हूं जो ये जानता है कि मैं प्रगाढ़ निद्रा से गहरी नींद, रात को बहुत सुख की नींद सोया। रात सारी स्वप्न में बीत गई, रात नींद ही नहीं आई। जो ये जानने वाला है वह आत्मा है, वह तू। महाराज, से जाना कैसे जाए? जो आप कहते हैं वह सही है, मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं। पर इसे जाना कैसे जाए? इसे अनुभव कैसे किया जाए? संत महात्मा समझाते हैं, बेटा पिक्चर देखने के लिए जाते हो, सामने स्क्रीन फिक्स्ड है, उस पर पिक्चर चलती घूमती सब कुछ होता दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तू आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तू आत्मा को देखना चाहता है, तो अपने मन को भी इसी प्रकार से स्थिर कर जैसे वो स्क्रीन स्थिर है। जब तक ये शांत नहीं होगा, जब तक ये निश्चल नहीं होगा, जब तक ये मौन नहीं होगा, तब तक तू अपने असली स्वरूप को कभी नहीं जान पाएगा। यही एक ढंग है देवियों सज्जनों आत्म साक्षात्कार का। ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे अखंड नाम स्मरण है, चाहे कुछ भी है, प्राणायाम करता है, योगाभ्यास करता है, कर्म योग करता है, भक्ति योग करता है, ज्ञान योग करता है, जितनी भी साधनाएं हैं, सब का एक ही लक्ष्य है, अपने मन को मौन स्थिर शांत करना। जब मन ऐसा हो जाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है। कैसी भेद की बात है, उसी को आत्मा कहा जाता है। मनो वह आत्मा जो हर वक्त सोच विचार में डूबा रहता है, उसे मन कहते हैं। जिसकी सोच विचार सारी खत्म हो जाती है, जिसका मन निश्चल हो जाता है, फिजूल की उधेड़ बुन खत्म हो जाती है, जिसकी शांत हो जाता है, जो चंचल नहीं रहता अचंचल हो जाता है, जो अस्थिर नहीं रहता स्थिर हो जाता है, उस मन को मन ही कहा जाता है, उसे आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहलाता है। मानो मन नाम की कोई चीज अंदर ही नहीं, ये आत्मा ही है। जो मनन करता है तो मन बन जाता है, चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है। मानो इस आत्मा के अतिरिक्त और इस देह में और कुछ नहीं है, या देह है या फिर आत्मा है, बस वह परब्रह्म परमात्मा ज्योति रूप में आत्मिक रूप में हमारे भीतर विराजमान है। वत्स वह ज्योति पांच तत्वों से ढकी हुई है। उन तत्वों को, उन परतों को आदमी जब एक एक करके तोड़ता जाता है तो ज्योति के दर्शन होते हैं। ज्योति सदा जगमगाती रहती है, उसमें तेल घी बाती इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ज्योतिर्मयी है वह ज्योति। आत्मिक ज्योति स्वयं ज्योतिषमान है, उसको किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, उसे मोमबत्ती की जरूरत नहीं, दीपक की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, सितारों की जरूरत नहीं, उसे बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं, वह स्वतः प्रकाश है, वह अपने आप में ही जगमगाने वाली ज्योति है। न घी चाहिए, न तेल, न बाती चाहिए, वह हर वक्त जगमगाती है। हाँ, पांच तत्वों से ढकी हुई है, कवच है। ऐसे शिपानी जैसे एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर ये बल्ब, ऐसा बल्ब उसके ऊपर एक घड़ा बांध दिया जाए अच्छी तरह से, तो लाइट तो जल रही है लेकिन उस घड़े में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, मानो अंधकार ही अंधकार हो गया है। सबसे पहली लेयर बाहर से शुरू करते हैं, सबसे पहली लेयर पृथ्वी तत्व की लेयर है, इससे लोभ की उत्पत्ति होती है। संत महात्मा बड़े सरल ढंग से हम सबको समझाते हैं वह ज्योति किन तत्वों से ढकी हुई है। सबसे बाहर बड़ी मोटी परत है, ये बड़ी मोटी लेयर है, जैसे आपको घड़े की उदाहरण दिया है, घड़ा ऊपर बांध दिया जाए, अंदर जितनी मर्जी रोशनी होगी बाहर निकल नहीं सकती, किसी भी ढंग से नहीं निकल सकती। पहली लेयर बाहर की लेयर बड़ी मोटी लेयर है, लोभ की लेयर है। अब लोभ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप जानते हो। इससे अंदर की लेयर दूसरी लेयर जल तत्व है, इससे मुंह की उत्पत्ति होती है। एक ही से मुंह हो सकेगा मेरी माता और सज्जन, संतों महात्माओं के टोटके बहुत याद रखने योग्य, या संसार से या परमात्मा से, वेरी क्लियर। जब तक संसार के प्रति मुंह बना रहेगा तब तक परमात्मा के साथ मुंह नहीं हो पाएगा। बी श्योर अबाउट इट। दूसरी, तीसरी, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। तीसरी लेयर, पहली पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरी लेयर अग्नि तत्व की है। इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी अपने आप को जान नहीं सकेगा, कभी परमात्मा के समीप तक नहीं पहुंच सकेगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति से परमात्मा भी घबराता है। इसे दूर ही रखो, इसे दूर ही रहना चाहिए, इसे मेरे पास नहीं भटकना चाहिए। क्यों? मैं मौन हूं, मैं शांत हूं, मैं हर वक्त आनंदित हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे आनंद एवं शांति में कोई खलल आके कोई ही मचाए। और क्रोध ही हर एक के जीवन में, अपने जीवन में ही और दूसरों के जीवन में ही खलल पैदा करने वाला व्यक्ति हुआ करता है क्रोधी। चौथी परत, वायु तत्व। इससे काम की उत्पत्ति होती है। चार लेयर्स हो गई। अंतिम परत, संत महात्मा कहते हैं बहुत बारीक है, बिल्कुल ज्योति के साथ लगभग चिपकी हुई, जुड़ी हुई, बहुत पतली, आकाश तत्व। इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये सब कुछ खत्म हो जाए यदि वह जो साथ जुड़ी हुई बड़ी बारीक लेयर है वह बनी रहती है, तो भी आत्म ज्योति जो है वह प्रकट नहीं होती। तो देवी सज्जनों, साधना का लक्ष्य हुआ अपने आप को निर्विचार करना। निर्विचार तो बाद की बात है, अपने आप को निर्विकार करना। निर्विकार हो जाओगे तो अपने आप निर्विचार हो जाओगे। तो लक्ष्य क्या हुआ साधना का? अपने आप को निर्विकार करना। इन विकारों को एक एक करके छोड़ते जाना ही साधना का लक्ष्य है। यही साधना की प्रगति है। कैसे जानोगे कौन सा विकार बाकी रह गया है, कौन से छूट गए हैं? इनको देखते रहना, निहारते रहना, इनको छोड़ते जाना ही साधना में प्रगति के चिन्ह है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा इस प्रसंग को। धन्यवाद।